प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करें, अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे। हम प्रार्थना करें। हे महाप्राक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर क्षण हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके पवित्र और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को समझने, ग्रहण करने और इस पर विश्वास करने के लिए हमें सामर्थ, बुद्धि और अपनी सहायता प्रदान करने की कृपा करें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, किसी समस्या में उलझा हुआ है, प्रभु आप उनकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 18वें अध्याय को आरंभ करेंगे। इस अध्याय में भी हम पौलुस प्रेरित की दूसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा का अध्ययन करेंगे। दूसरी यात्रा जारी रहने के कारण हमारा मुख्य विषय पौलुस की दूसरी सुसमाचार यात्रा है। दूसरी यात्रा के समय प्रेरित पौलुस कुरिन्थुस नगर तथा इफिसुस नगर गए। पिछले अध्याय में हमने पौलुस को थिस्सलुनीके, बीरिया तथा एथेंस नगरों में सुसमाचार प्रचार करते और नाना प्रकार के जोखिम उठाते देखा। इनमें बीरिया नगर के लोग सज्जन थे, उन्होंने उत्साह के साथ वचन को ग्रहण किया। एथेंस में पौलुस की भेंट यूनान के महान दार्शनिकों तथा ज्ञानियों से हुई, परंतु ज्ञानियों का ये देश प्रतिमाओं से भरा हुआ था। ये ज्ञानी लोग एक अनजाने परमेश्वर की उपासना करते थे। प्रेरित पौलुस ने उसी अनजाने परमेश्वर से उनका परिचय कराया। उसने उन्हें बताया, जैसा कि हम 24वें पद में पढ़ चुके हैं, कि परमेश्वर जिसने जगत और उसमें की सब वस्तुओं को बनाया, वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। वह हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। पौलुस ने बताया कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है और वही प्रभु है। तब 29वें पद में प्रेरित ने बताया, किसी प्रकार परमेश्वर की संतान होकर हमें ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर सोने, चांदी अथवा पत्थर की किसी कारीगरी के समान है, जो मनुष्य की कला और कल्पना से गढ़ा गया हो। प्रेरित पौलुस ने उन्हें बताया कि परमेश्वर की संतान होकर मनुष्य की काल्पनिक कारीगरी की उपासना हमें नहीं करना है। और तब 30वें पद में उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चाताप करना मनुष्य के लिए आवश्यक है, इसलिए अज्ञानता के समयों की उपेक्षा करके परमेश्वर अब हर जगह के सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि पश्चाताप करें। पौलुस उनको पश्चाताप का संदेश देते हैं। प्रिय मित्र, परमेश्वर की दृष्टि में पश्चाताप का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर से संबंध स्थापित कर सकता है, वह पाप के दंड से बच सकता है, अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकता है। किंतु पश्चाताप के लिए हमें यह स्वीकार करना है कि हम पापी हैं, हम दोषी हैं, हमें परमेश्वर से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। और तब पूर्ण हृदय से अपने मन को फिराकर हम परमेश्वर की ओर लगाएं, और तब परमेश्वर हमें निश्चित रूप से क्षमा करके ग्रहण करता है। एथेंस में पौलुस अकेले ही यात्रा पर थे, और जबकि सीलास और तिमोथियस अभी मैसिडोनिया के फिलिप्पी नगर ही में सेवा कर रहे हैं। एथेंस में पौलुस ने मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान का प्रचार किया, परंतु वे लोग पौलुस का ठट्टा करने लगे, क्योंकि वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु कुछ लोगों ने विश्वास किया। इसलिए पौलुस एथेंस से निकलकर कुरिन्थुस नगर को चले गए। कुरिन्थुस एथेंस से लगभग 35 मील की दूरी पर है। आइए आज हम प्रेरित पौलुस को कुरिन्थुस नगर में सेवकाई करते हुए देखेंगे। हमारे साथ देखें प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, प्रेरितों के कार्य 18 अध्याय 1 से 11 पदों को हम सर्वप्रथम देखेंगे। प्रथम पद में लिखा है, इन बातों के पश्चात पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थुस चला गया और उसे अक्विला नामक पुंतुस निवासी एक यहूदी मिला जो हाल ही में अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से आया था। क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की राजाज्ञा दी थी, वह उनके यहां गया और इसलिए कि उसका भी वही व्यवसाय था वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, क्योंकि व्यवसाय से वे तंबू बनाने वाले थे। और वह प्रत्येक सप्त के दिन आराधनालय में तर्क वितर्क करके यहूदियों और यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। परंतु जब सिलास और तिमोथियस मैसिडोनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों के समक्ष साक्षी देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब उन्होंने विरोध किया और निंदा की तो उसने अपने वस्त्र झाड़ते हुए उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारे सिर पर हो, मैं निर्दोष हूं। अब से मैं गैर यहूदियों के पास जाऊंगा वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक एक व्यक्ति के घर गया जो परमेश्वर का भक्त था और जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। और आराधनालय के प्रधान क्रिस्पुस ने अपने समस्त कुटुंब समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थियों ने जब यह सुना तो विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। रात को प्रभु ने दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, प्रचार करता जा और चुप ना रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई व्यक्ति हानि पहुंचाने के लिए तुझ पर आक्रमण ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं और वह उनके मध्य परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। मित्रवर, कुरिन्थुस नगर अपने समय का अत्यंत दुष्ट नगर था। यह दुष्टता का केंद्र था। मदिरापान, व्यभिचार तथा प्रत्येक प्रकार के शारीरिक कार्य यहां चरम सीमा पर थे। आज भी यहां के स्नानागारों को आप देख सकते हैं। यहां वीनस का मंदिर है, वीनस देवी। हजारों कुंवारी कन्याएं रहती हैं इन मंदिरों में। ये चिर कुंवारियां कहलाती हैं। वे सब कुछ होने के पश्चात भी कुंवारी हैं। वास्तव में वे वैश्याएं हैं। व्यभिचार यहां का धर्म था। काम वासना यहां का धर्म था। दुष्टता को धर्म का रूप देने में बड़ी सुविधा रहती है। काम वासना और दुष्टता के कार्य कुरिन्थुस नगर का धर्म था। संसार के सभी देशों से यहां व्यापारी आते थे। ये एक व्यापारिक नगर था। पौलुस अपनी दूसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा पर यहां आए। वे तीसरी यात्रा पर भी यहां आएंगे। उन्होंने कुरिन्थुस में पर्याप्त समय व्यतीत किया। कुरिन्थुस तथा इफिसुस नगरों में पौलुस ने सबसे अधिक समय सेवा की। इफिसुस नगर धार्मिक केंद्र था, जबकि कुरिन्थुस नगर पाप का केंद्र था, अधर्म का केंद्र था। ये दोनों ही नगर प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। कुरिन्थुस जाते ही पौलुस ने क्या किया, दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, और उसने अक्विला नामक पुंतुस निवासी एक यहूदी से भेंट की जो हाल ही में अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की राजाज्ञा दी थी। वह उनके यहां गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां उसको एक यहूदी दंपति मिल गया जो कुछ ही समय पूर्व रोम से आया था, क्योंकि राजा ने यहूदियों को निकल जाने की आज्ञा दी थी। पति का नाम अक्विला तथा पत्नी का नाम प्रिस्किल्ला था। तीसरा पद बताता है कि ये तंबू बनाने का कार्य करते थे और यही कार्य पौलुस का भी था। पौलुस ने प्रवेश मसीह पर विश्वास लाने में उनकी सहायता की थी और इस प्रकार वे सब मिलजुल कर यहूदियों और यूनानियों के बीच में कार्य करते रहे, उन्हें सिखाते और समझाते रहे, आराधनालय में जाकर तर्क वितर्क करते रहे। किंतु पांचवें पद में हम पढ़ते हैं, जब सिलास और तिमोथियस मैसिडोनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों के समक्ष साक्षी देने लगा कि यीशु ही मसीह है। اس بات کو سن کر یہودیوں نے پولوس کی نندا کی، اس سے جھگڑا کیا، اور تب پولوس نے اپنے وستر جھاڑتے ہوئے ان سے کہا کہ تمہارا لہو تمہارے سر پر ہو، میں نردوش ہوں، اور اب سے میں غیر یہودیوں کے پاس جاؤں گا، اب میں تمہارے مدھیہ میں سمے نشٹ نہیں کروں گا۔ اور تب سے پریرت پولوس پورنتہ انیہ جاتیوں میں سوسماچار پرچار کرنے لگے، اور جب وہ انیہ جاتیوں میں گئے تو انہوں نے انیک لوگوں کو سوسماچار سنایا۔ یہاں پر آرادھنالے کے پردھان کرسپس کے وشے میں بتایا گیا ہے، اس نے پربھو پر وشواس کیا، بہت سے کرنتھیوں نے وشواس کیا، بپتسمہ لیا، اور جبکہ بہت سے لوگ پولوس کے ورودھ میں تھے، انیک یہودی پولوس کے ورودھ میں تھے، اور اس سمے پربھو پرمیشور نے پولوس سے کہا، اس کو درشن دیا کہ مت ڈر، پرچار کرتا رہے، سوسماچار سناتا رہے، اور چپ نہ رہے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے کوئی ویکتی ہانی نہیں پہنچائے گا، تجھ پر کوئی آکرمڑ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نگر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ اور اس پرکار لگ بھگ ڈیڑھ ورش تک پولوس وہاں رہا اور پرمیشور کا وچن سکھاتا رہا۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ پناہ پولوس کا ورودھ آرم کرتے ہیں۔ بارہویں پد سے دیکھیں، جب گلیو اکھایا کا راجپال تھا تو یہودی ایک آ کر کے پولوس کے ورودھ اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے نیائے آسن کے سمکھ لا کر کہنے لگے، یہ منش ویوستھا کے وپریت پرمیشور کی اپاسنا کرنے کے لیے لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ یہاں پر ہم گلیو راجپال کے وشے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہودیوں نے پولوس کے اوپر ایک جھوٹا آروپ لگایا، وہ جانتے تھے کہ یدی ہم رومی شاسک کے ورودھ کوئی بات کہیں گے، کوئی آروپ لگائیں گے تو وہ سویکار کیا جائے گا، اور اس سے گلیو راجپال ان سے پرسن ہوگا۔ انہوں نے اس پر یہ آروپ لگایا کہ یہ لوگوں کو منشیہ کی ویوستھا کے وپریت پرمیشور کی اپاسنا کرنے کے لیے لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ تو اس پرکار سے یہودی پولوس کا ورودھ کرتے ہیں۔ تب آگے لکھا ہے، یہ منشیہ ویوستھا کے وپریت پرمیشور کی اپاسنا کرنے کے لیے لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ جب پولوس بولنے ہی کو تھا تو گلیوں نے یہودیوں سے کہا، ہے یہودیوں، یدی یہ کوئی انیائے یا گھور اپرادھ کی بات ہوتی تو تمہارا یہ ابھیوگ سننا میرے لیے نیائے سنگت ہوتا، پرنتو یدی یہ وواد شبدوں اور ناموں اور تمہاری ہی ویوستھا کے وشے میں ہے تو تم ہی جانو، میں ان باتوں کا نیائے نہیں بننا چاہتا۔ اور اس نے انہیں نیائے آسن کے سامنے سے بھگا دیا۔ تب سب لوگوں نے آرادھنالے کے پردھان سوستھ نے اس کو پکڑ لیا اور اسے نیائے آسن کے سمکھ پیٹنے لگے، پرنتو گلیوں نے ان باتوں کی کچھ بھی چنتا نہیں کی۔ متروار بائبل کے ودوان اس ویکتی گلیوں کو اس سمبندھ میں دوشی ٹھہراتے ہیں، پرنتو میرا وچار اس کے لیے بھن ہے۔ ہمارے وچار سے اس رومی راجپال نے اچت ہی کیا، وہ رومی نیادھیش تھا، اس کا سمبندھ کیول رومی قانون ویوستھا تک سیمت تھا، اور اس لیے گلیوں نے اسپشٹ کہہ دیا کہ یدی یہ دھرم کا معاملہ ہے تو تم ہی جانو، اپنے آپ نپٹاؤ۔ اور اس پرکار گلیوں نے راجنیتی کو دھرم سے الگ رکھا۔ اس کا تاتپریہ یہ ہے کہ وہ کرنتھس میں پولوس کی سیوا میں کسی پرکار کی بادھا اتپن نہیں کرے گا۔ آج بھی یہ آوشکتا ہے کہ دھرم کو راجنیتی سے الگ رکھا جائے۔ جیسا گلیوں نے کیا ویسا ہی پرتیک ادھیکاری کو کرنا چاہیے۔ اور گلیوں نے اپنے ویوہار کے دوارا پرکٹ کیا کہ وہ پولوس کی سیوا میں بادھا اتپن نہیں کرے گا۔ تب 18ویں پد سے آگے ہم پڑھتے ہیں، تب پولوس نے وہاں اور ادھک دنوں تک رہ کر اپنے بھائیوں سے ودا لی اور پرسکلا تتھا اکویلا سہت جل مارگ سے سیریا کو روانہ ہوا۔ کنکریا میں اس نے سر مڑایا کیونکہ اس نے منت مانی تھی۔ پھر وہ افسوس پہنچے جہاں اس نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ آپ آرادھنالے میں جا کر یہودیوں سے ترک وترک کرنے لگا۔ جب لوگوں نے اس سے کچھ دنوں کے لیے رہنے کو کہا تو اس نے سویکار نہیں کیا، پرنتو ودا لیتے سمے اس نے یہ کہا، یدی پرمیشور کی اچھا ہو تو تمہارے پاس پھر آؤں گا۔ تب وہ افسوس سے جہاز دوارا روانہ ہوا۔ متروار 18वें पद में हम पढ़ते हैं जहां लिखा है, तब पौलुस ने वहां और अधिक दिनों तक रहकर भाइयों से विदा ली और प्रिस्किल्ला तथा अक्विला सहित जल मार्ग से सीरिया को रवाना हुआ और किंख्रिया में उसने सिर मुड़ाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी। पौलुस द्वारा मन्नत माने जाने पर अनेक लोगों को आपत्ति हो सकती है। आप कह सकते हैं कि जबकि पौलुस अनुग्रह का प्रचार करता है तो वह व्यवस्था के अधीन रहकर कार्य क्यों कर रहा है। मित्रवर, ऐसा करके आप पौलुस के लिए नियम बना रहे हैं। मित्रवर, आप अनुग्रह में होकर भी मन्नत मान सकते हैं। आप अनुग्रह के अंतर्गत होकर भी मन्नत मान सकते हैं। अगर आप नहीं मानना चाहते तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आप मन्नत नहीं मानते हैं तो परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होंगे, क्रुद्ध नहीं होंगे। किंतु यदि आप मन्नत मानते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं तो परमेश्वर उससे दुखी होते हैं, वरन यह आपका पाप है। तो यदि आप मन्नत मानते हैं तो आपको इसे पूरा करना पड़ेगा। मन्नत के विषय में परमेश्वर ने ऐसा ही नियम बनाया है। मन्नत मानना आपकी स्वतंत्र इच्छा पर है। मसीही जीवन स्वतंत्रता का जीवन है, क्योंकि विश्वासी जन जानता है कि उसे इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है जिसके करने से आपकी संगति प्रभु से समाप्त हो जाए। अब पौलुस अपनी दूसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा से वापस लौट रहे हैं। वो कुरिन्थुस से अंताकिया वापस जा रहे हैं। किंख्रिया कुरिन्थुस नगर का बंदरगाह है जो नगर की पूर्व दिशा में है। पौलुस के साथ अक्विला और प्रिस्किल्ला भी यात्रा पर हैं। जाते समय परमेश्वर के आत्मा ने इफिसुस जाने की स्वतंत्रता उसको नहीं दी, परंतु लौटते समय वह इफिसुस भी गए, वहां केवल कुछ ही दिन रहे। इफिसुस में सुसमाचार के लिए द्वार खुला हुआ था। पौलुस का मन भी इफिसुस में लगा हुआ था। इफिसुस रोम के बड़े नगरों में से एक था। तब अग्रिम पदों में पढ़ते हैं हम, यहां लिखा है, जब वह कैसरिया में उतरा तो उसने ऊपर चढ़कर कलीसिया से भेंट की और फिर नीचे उतरकर अंताकिया को चला गया तथा वहां कुछ समय और व्यतीत करके उसने विदा ली और गलातिया तथा फ्रूगिया प्रदेशों का भ्रमण करते हुए वह सब जेलों को स्थिर करता रहा। फिर अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो कुशल वक्ता तथा पवित्र शास्त्र में निपुण था, इफिसुस में आया। इस मनुष्य को प्रभु के मार्ग की शिक्षा दी गई थी। वह बड़े उत्साह, आत्मिक उत्साह से भरकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, पर वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के विषय में जानता था। वह आराधनालय में निर्भीकता से बोलने लगा, परंतु जब प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसकी सुनी तो उन्होंने उसे अलग ले जाकर परमेश्वर के मार्ग के विषय में और भी ठीक ठीक समझाया। जब उसने उस पार अखाया को जाना चाहा, तो भाइयों ने उसे प्रोत्साहित किया और जेलों को लिखा कि उसका स्वागत करें, और जब वह वहां पहुंचा तो उसने उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के द्वारा विश्वास किया था, क्योंकि उसने पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, प्रबलता के साथ यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर किया। मित्रवर, जिस समय पौलुस उत्तरी भाग में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय में इफिसुस नगर में अपुल्लोस नाम का एक यहूदी प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार कर रहा था। आप प्रश्न करेंगे कि ये अपुल्लोस कौन है। अपुल्लोस एक यहूदी था। वह मूसा की व्यवस्था की पृष्ठभूमि से संबंधित था। उसका नाम यूनानी नाम था। अपुल्लोस यूनानी नाम है, परंतु उसका जन्म यूनान में नहीं हुआ था। वह उत्तरी अफ्रीका के सिकंदरिया नगर में जन्मा था। अंग्रेजी में इसे अलेक्जेंड्रिया कहते हैं। ये नगर सिकंदर महान अर्थात अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा बसाया गया था। ये यूनान की सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यही वो नगर है जहां पुराने नियम का यूनानी भाषा में रूपांतर हुआ, और इसी स्थान पर सेप्टुआजिंट सभा की स्थापना हुई। इसमें इसराइल के प्रत्येक गोत्र से 6-6 सदस्य अर्थात प्राचीन लिए गए, जिनकी सहमति से पुराने नियम का यूनानी रूपांतर हुआ। और उस समय सिकंदरिया में यहूदियों का आराधनालय था, और प्रारंभिक कलीसिया का मुख्य केंद्र यरूशलेम वहां से हटकर अंताकिया नगर को चला गया था तथा अंताकिया से सिकंदरिया को स्थानांतरण हो चुका था और ये नगर कलीसिया के इतिहास में अनेक शताब्दियों तक महत्वपूर्ण रहा है और यहां से कलीसिया के महान व्यक्तियों का उदय हुआ है। अपोलुस का समकालिक फिलियो नामक एक व्यक्ति ने यूनानी दर्शन को यहूदीवाद के साथ मिश्रित कर दिया। इसने प्लूटोवाद तथा जुडाइज्म को एक साथ मिला दिया और इसलिए अपोलुस निसंदेह इस पृष्ठभूमि से पूर्ण रूप से प्रभावित था और 24वें पद के अनुसार वह बोलने में कुशल तथा पवित्र शास्त्र में निपुण था। इसका तात्पर्य यह है कि उसने पवित्र शास्त्र का पूर्ण ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त किया था। किंतु मेरे मित्र, हम यहां 26वें पद में पढ़ते हैं कि जब अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उसकी बातें सुनी तो उसे अलग ले जाकर परमेश्वर के मार्ग के विषय में और भी ठीक ठीक समझाया। प्रिय मित्र, यहां ये बात स्पष्ट होती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से क्या संबंध है। क्या हम पुस्तकों को पढ़कर परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हम धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या हम परमेश्वर पर विश्वास लाकर उनसे व्यक्तिगत संबंध स्थापित रखना चाहते हैं? प्रिय मित्र, स्मरण रहे, यदि हमारा संबंध व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ है तो हम परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान रख सकते हैं। और इस प्रकार अक्विला और प्रिस्किल्ला जो साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने इस ज्ञानी व्यक्ति को परमेश्वर के विषय में सिखाया। तत्पश्चात अपोलुस ने अखाया के लिए प्रस्थान किया। उसने यूनानी नगरों का भी भ्रमण किया। उसने कुरिन्थुस तथा एथेंस नगरों में भी प्रचार किया कि यीशु ही मसीह और उद्धार करता है। अपोलुस के इफिसुस से चले जाने के पश्चात पौलुस अपनी तीसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा के अंतर्गत इफिसुस नगर पहुंचे और इफिसुस नगर वासी हमारे देश के समान धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, किंतु जीवित और सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। अब आज हम यहीं ठहर जाते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोता, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। हमारा ईमेल एड्रेस है hindittv@radiovv.org, hindittv@radiovv.org। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।